आयु काफी दिनों बाद हॉस्पिटल आई थी। उसका पीछा करते हुए फैज खान मुंबई आ चुका था। आयु से कांटेक्ट करने के लिए फैज ने जानबूझकर पार्किंग एरिया में अपना एक्सीडेंट करवा लिया। उसने अपने साथ दो और लोगों को घायल कर लिया था। जनरल वार्ड में आयु फैज के पास खड़ी थी और नर्सेस को इंस्ट्रक्शंस दे रही थी। वहीं फैज ने उसे पहली बार देखा था तो वो उसके चेहरे में खोया हुआ था। जैसे ही आयु ने फैज का हाथ पकड़ा, उसका ध्यान टूटा और वो होश में आया। वो अपने ख्यालों में खोया हुआ आयु के हाथ को धीरे धीरे सहला रहा था। आयु ने फैज का हाथ छोड़ा और उसके चेहरे को देखकर कहा, सर आप कुछ फील कर पा रहे हो? क्या आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? फैज ने बिना कुछ कहे हाँ में पलके झपका दी। आयु ने स्टेथोस्कोप लगाया और फैज की हार्टबीट चेक की। उसकी धड़कन नॉर्मल से काफी तेज चल रही थी। आयु जब फैज की हार्टबीट चेक कर रही थी तब उसने आयु के चेहरे की तरफ देखकर अपने मन में कहा, हम बिल्कुल ठीक हैं, बस आप हमारे इतने करीब आई हैं तो दिल बेकाबू होकर धड़क रहा है, प्लीज हमें छोड़कर कहीं मत जाइएगा। मुझे आपकी कंडीशन स्टेबल लग रही है, आयु ने कहा तो फैज का ध्यान टूटा। फिर उसने वार्ड बॉय को अपने पास आने को कहा। उसके पास आते ही आयु ने कहा, ऐसा करो इनके सारे टेस्ट करवा दो और रिपोर्ट आते ही डॉक्टर मित्तल को रिपोर्ट दिखा देना। तुमने इन्फॉर्म किया कि एक्सीडेंट केस आया है? वार्ड बॉय ने उसकी बात पर हाँ में सिर हिलाया। फैज और बाकी तीनों लोगों के सिर में कोई चोट नहीं आई थी, इसलिए वो केस आयु का नहीं था। उन सबका प्राइमरी चेकअप करने के बाद आयु ने सारा मामला डॉक्टर मित्तल और नर्स पर सौंप दिया था। उसने भी नोटिस किया था कि एक आदमी को छोड़कर फैज और दूसरे आदमी को कोई खास चोट नहीं लगी थी। जिसे ज्यादा चोट लगी थी उसका पैर फंस गया था और उस वजह से उसका पैर फ्रैक्चर हो गया था। आयु वहां खड़ी वार्ड बॉय से बात कर रही थी तभी आयान वहां पर आया। उसे भी एक्सीडेंट होने की न्यूज मिल चुकी थी। जैसे ही आयान जनरल वार्ड में आया, उसने फैज का हाथ आयु की तरफ बढ़ते हुए देखा। उसने फैज की नजरों को नोटिस किया तो वो अजीब तरीके से आयु को देख रहा था और ये सब ऑब्जर्व करने के बाद आयान को काफी गुस्सा भी आ रहा था। वो तेज कदमों से चलकर आयु के पास आया। आयान ने फैयू के पास आते ही सबसे पहले तिरछी निगाहों से फैज की तरफ देखा, जो घायल होने के बावजूद आयु को बुरी तरह घूरे जा रहा था। आयान ने आयु की तरफ देखकर तेज आवाज में कहा, यहाँ क्या कर रही हो तुम? मैंने तुम्हें कहा था कि हमारी इमरजेंसी सर्जरी है। ऑलरेडी मैं पिछले दो दिनों से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। हम और देर नहीं कर सकते हैं और तुम यहाँ केस स्टडी करने के बजाय यहाँ जनरल वार्ड में ड्यूटी दे रही हो। व्हाट काइंड ऑफ इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर डॉक्टर? आयान को आयु के लेट आने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी और वैसे भी अगर किसी की सर्जरी दो दिन डिले की जा सकती है तो दो घंटे में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। उसे फैज पर गुस्सा आ रहा था और उसने वही गुस्सा आयु पर उतार दिया। यहाँ कोई था नहीं तो मैं चेकअप करने के लिए आ गई। मैं आने वाली थी क्योंकि यहाँ सब नॉर्मल है, आयु ने नजर झुकाकर जवाब दिया। गलती उसकी थी और आयान उसका सीनियर था, उसको उसे डांटने का पूरा हक था। आयान ने सबके सामने आयु को काफी बुरी तरीके से डांटा था और ये बात फैज को अच्छी नहीं लगी। उसने गुस्से में आयान के चेहरे को गौर से देखा। आयान को देखते हुए फैज अपने मन में बड़बड़ा कर कहा, उफ, ये छवि सिंघानिया का बेटा बिल्कुल उस पर गया है, खामखा इतना सीन क्रिएट कर रहा है। ये तो हम यहाँ इनके सामने हैं, वरना इन पर चिल्लाने के लिए ये अगला शब्द बोलने के लायक नहीं रहता। गुस्से में फैज ने मुट्ठी कस ली थी। छवि सिंघानिया खान की काफी खास थी तो उससे जुड़े लोगों के बारे में उसे अच्छे से पता था। आयान भले ही फैज से पहली बार मिल रहा हो, लेकिन फैज काफी बार आयान की फोटो और उसे सिंघानिया हाउस में देख चुका था। आयान ने आयु का हाथ पकड़ा और फिर फैज की तरफ गुस्से भरी लुक देकर उसे वहां से ले गया। वहीं आयु भी आयान के बर्ताव से हैरान थी। वो गुस्सा जरूर करता था लेकिन इस तरह सबके सामने उसे डांटना ये बहुत कम मौके पर होता था, जबकि आयु की तो आज कुछ गलती भी नहीं थी। जनरल वार्ड से आयान के केबिन में आते ही आयु ने आयान का हाथ छटका और गुस्से में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर गुस्सा करने की, वो भी सबके सामने? मैं कोई वहां गॉसिप नहीं कर रही थी, पेशेंट संभाल रही थी, और तुम मुझ पर ऐसे सबके सामने चिल्ला भी कैसे सकते हो? हाँ, क्योंकि चिल्लाने की जरूरत है। तुम्हें अपने आसपास के लोग दिखाई नहीं देते क्या कि वो किस इंटेंशन से तुम्हें छू रहे हैं, तुम्हें देख रहे हैं? लेकिन नहीं, तुम्हें अपनी दुनिया से फुर्सत मिले तो तुम आसपास देखो ना, आयान ने जवाब दिया। उसे अभी भी आयु पर ही गुस्सा आ रहा था कि वो केयरलेस होकर पेशेंट के इतने करीब कैसे जा सकती हैं, जबकि कौन सा इंसान कैसे होता है इसके बारे में पहली नजर में हमें नहीं पता चलता है। आयु हैरानी से आयान की तरफ देख रही थी। फिर उसने भौंहें उठाकर कहा, कहीं तुम्हें ऐसा करने के लिए आरफ ने तो नहीं कहा कि मुझे किसी के पास नहीं जाना है, किसी को ठीक से चेक नहीं करना है, हर पल मेरी जासूसी करनी है? आयु की बातें सुनने के बाद आयान उस आदमी के साथ साथ अब आयु पर भी गुस्सा आने लगा था। वो चिढ़ते हुए बोला, ओ कम ऑन आयु, मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए किसी के कहने की जरूरत नहीं है। भाई तुम्हें सिर्फ 6 महीने से जानते हैं और मैं पिछले 8 साल से। तुम्हें समझ नहीं आया होगा, लेकिन जिस इंसान को तुम चेक कर रही थी वो तुम्हें बहुत ही बुरे तरीके से देख रहा था, और वो नजरें अच्छी तो किसी भी हाल में नहीं थी। जब मैं सेंस कर सकता हूँ तो पता नहीं तुम्हारा ध्यान कहाँ था। उसने तुम्हें छूने की कोशिश की, मैं कुछ नहीं जानता। आगे से तुम तब तक एक्शन नहीं लोगी जब तक तुम्हारी जरूरत ना हो, और अब मुझे इस बात पर बहस नहीं चाहिए। थोड़ी देर बाद सर्जरी है, अभी केस स्टडी कर लेनी चाहिए। अयान ने टॉपिक को यहीं पर क्लोज कर दिया था। अयान ने आयु को सामने बैठने का इशारा किया और खुद अपनी चेयर पर आकर बैठ गया। उसने कुछ फाइल्स निकाली जिसमें पेशेंट की रिपोर्ट थी और आयु के सामने रख दी। लगभग 1 घंटे तक अयान और आयु उस केस की स्टडी करके सर्जरी की प्लानिंग प्लाने में लगे रहे। सब कुछ प्लान होने के बाद अयान ने कहा, डॉक्टर सिद्धि आज अवेलेबल नहीं है तो हम दोनों को ही देखना होगा, बाकी जूनियर स्टाफ हमारे पास मौजूद होंगे। आयु ने फील किया अयान अभी भी गुस्से में ही बात कर रहा था। उसने पानी का ग्लास उठाया और अयान की तरफ बढ़ाते हुए कहा, अच्छा ठीक है, मैं मान लूंगी तुम्हारी बात। सबसे पहले तुम पानी पीकर अपने गुस्से को शांत करो। ये गुस्सा सिर्फ मेरी वजह से नहीं हो सकता, साक्षी दीदी से बात हुई तुम्हारी। अयान ने पानी पिया और गहरी सांस लेकर छोड़ी। उसने फिर धीरे से जवाब में कहा, उस दिन मैंने तुम्हारा फेवर किया था, इस वजह से वो मुझसे नाराज है। रहा सहा काम भाई ने बिगाड़ दिया। उन्होंने सबके सामने बोल दिया कि मैं साक्षी को लाइक करता हूँ। उसके बाद उन्होंने मुझे सब जगह से ब्लॉक कर दिया। अयान का चेहरा उतरा हुआ था। सारी बातें जानने के बाद आयु जोर जोर से हंसने लगी। उसके ऐसा करने पर अयान तिरछी निगाहों से घूरते हुए उसे देख रहा था। आयु ने अपनी हंसी कंट्रोल करके कहा, पता नहीं क्यों मुझे ऐसी सिचुएशन में भी हंसी आ रही है। तुम ना आरव की हेल्प मत लिया करो, वो किसी का काम बनाने के बजाय बिगाड़ने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहता है। हाँ पता है मुझे, वो बचपन से ही ऐसे हैं, लेकिन देख रहा हूँ उनके साथ रहते हुए तुम भी उन्हीं की तरह हो रही हो। मुझे कंसोल करने के बजाय तुम मेरी सिचुएशन पर हंस रही हो, अयान ने बच्चों की तरह मुंह बनाकर कहा। तो आयु ने तुरंत अपने होठों पर उंगली लगा ली।
कुछ देर चुप रहने के बाद आयु ने अपने होठों से उंगली हटाकर कहा, अच्छा बताओ मैं किस तरह तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। साक्षी दीदी तो अब तक दिल्ली चली गई होगी ना, मैंने मंथन से बात की थी। उसने काम का बहाना बनाकर साक्षी को कुछ दिनों के लिए और रोक लिया। वो चाहता है कि जब तक तुम्हारी और साक्षी के बीच सब ठीक ना हो जाए तब तक वो उन्हें लेकर नहीं जाएगा। न जाने फिर तुम दोनों की मुलाकात कब हो, और वो नहीं चाहता कि ऐसे वो तुम्हें गलत समझे। अयान ने आयु को सब कुछ बता दिया। सारी बात सुनने के बाद अचानक आयु का चेहरा उतर गया। उसने साक्षी को अपनी बहन अनु की जगह दी थी। साक्षी के अब तक नाराज होने की वजह से आयु को अच्छा नहीं लग रहा था। आयु को उदास देखकर अयान ने कहा, एक बात कहूँ, अगर तुम्हें साक्षी को मनाना है तो प्लीज़ भाई की हेल्प मत लेना। ना तो उन्हें किसी को मनाना आता है और ना ही वो किसी की ठीक से हेल्प कर सकते हैं। अयान ने उसकी बात पर हामी भरते हुए कहा, हाँ जानती हूँ, पिछली बार भी उसी ने रायता फैलाया था। गुस्सा आता है मुझे उस पर, वो मुझे पूरा दिन तंग करके रखता है। अभी हॉस्पिटल आते टाइम भी रास्ते में पता नहीं क्या कुछ नहीं करवाया मुझसे। अयान को सब बताते हुए आयु के चेहरे से साफ जाहिर हो रहा था कि वो आरव से कितना परेशान थी। अब हंसने की बारी अयान की थी। सब जानने के बाद अयान के परेशान चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। अयान के हंसने पर आयु ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम भी अपने भाई की तरह नहीं होते जा रहे, मेरी हेल्प करने के बजाय यहाँ मुझ पर हंस रहे हो। अयान और आयु मुस्कुराते हुए एक दूसरे से बातें कर रहे थे। उन्हें इस तरह बात करने का मौका काफी टाइम बाद मिला था, तो दोनों सर्जरी से पहले खुद को रिलैक्स कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ मंथन घर पर साक्षी के साथ था। साक्षी मंथन से भी नाराज थी, और जिस दिन से रिसेप्शन पार्टी से दोनों लौटे थे एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। साक्षी चुपचाप ब्रेकफास्ट बनाने में लगी थी जबकि मंथन अपने लैपटॉप के साथ बैठा काम करने का दिखावा कर रहा था। ऐसा नहीं था कि बीते 3 दिनों में मंथन ने साक्षी से बात करने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन वो उससे नाराज थी और मंथन ये बात अच्छे से जानता था कि साक्षी की नाराजगी दूर करना इतना आसान नहीं था। मंथन बार बार साक्षी से बात करने की कोशिश किया करता। मंथन ने तेज आवाज में कहा, मुझे परांठे खाने हैं दी। ऑफकोर्स सर, और कोई डिमांड आपकी? यहाँ मैंने ब्रेकफास्ट में पहले ही पॉरेज और मिल्कशेक तैयार कर लिया है और इन्हें परांठे खाने हैं, साक्षी ने चिढ़कर कहा। साक्षी ने जैसे हिसाब से जवाब दिया था उसे सुनने के बाद मंथन की हंसी छूट गई। उसे लगा साक्षी किचन एरिया में थी, लेकिन जब मंथन ने नजरें उठाई तो साक्षी उसके सामने थी। साक्षी को अपने सामने देखते ही मंथन की हंसी गायब हो गई। साक्षी ने कुछ पल मंथन को घूरा और फिर वहां से चली गई। साक्षी के जाते ही मंथन ने राहत की सांस ली और धीरे से बड़बड़ाकर कहा, ओ गॉड, दी का गुस्सा, अब वही है जो मेरी हेल्प कर सकते हैं और मुझे उन्हें कॉन्टैक्ट करना ही होगा। मंथन ने तुरंत किसी को मैसेज छोड़ा और वहां से डाइनिंग एरिया में जाने लगा।